SBS हिंदी।
कुछ मुस्लिम सामुदायिक संगठनों ने प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के मेलबर्न की बर्क स्ट्रीट पर हुए आतंकी हमले के संबंध में दिए गए बयान पर चिंता और रोष प्रकट किया है। श्री मॉरिसन कहते हैं कि हमला करने वाला व्यक्ति एक टेररिस्ट था और उन्होंने उसके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े दावों को एक एक्सक्यूज करार दिया। हालांकि मुस्लिम समुदाय के संगठन प्रधानमंत्री सहित विभिन्न राजनेताओं के द्वारा मेलबर्न की बर्क स्ट्रीट जैसे हमलों को रोकने के लिए सुझाए इस्लामिक समाज की भागीदारी के तरीकों की आलोचना कर रहे हैं। हसन खलीफ शायर अली ने बर्क स्ट्रीट पर अपनी कार को आग लगाकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी और दो अन्य को घायल कर दिया था। उसके परिवार का कहना है कि उसको मेंटल हेल्थ की परेशानी सालों से थी और मदद स्वीकार न करने के कारण उसकी स्थिति बिगड़ती जा रही थी। लेकिन श्री स्कॉट मॉरिसन ने नेटवर्क 10 से कहा कि सभी बातों को सुनने के बाद भी शायर अली एक आतंकी था और उसने हिंसा का सहारा लिया क्योंकि वो रेडिकलाइज था और उसे माफ नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने इस मामले को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने के आरोप से साफ इनकार कर दिया।
That is the same lame old tired excuse for not dealing with this problem as has always been served up. And whether it's Ann Arley saying it or whether it's someone else in the community saying that, I don't believe that's where the majority of decent, hardworking, respectable Australian Muslims are at. They want their community to be safer, and there are people coming into their community and they are infecting their young people and others with hatred and false teaching, which is taking them off path. Now, That has to be called out and it has to be stopped.
रिपोर्टर्स को दिए एक नोट में शायर अली के परिवार ने राजनेताओं से उसकी मौत को राजनीतिक खेल में ना बदलने की गुजारिश की। परिवार का कहना है कि उसका आतंकवाद से कोई संबंध नहीं था, बल्कि वो तो मदद के लिए चिल्ला रहा था। श्री मॉरिसन का कहना है कि वे इस्लामिक समाज के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं जिससे ये पता किया जा सके कि कब और कहां लोगों को रेडिकलाइज किया जा सकता है। होम अफेयर्स मिनिस्टर पीटर डट्टन ने भी यही बात कही कि इस्लामिक समाज को सुरक्षा अधिकारियों को उन लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी देनी चाहिए जो खतरे में हैं। लेकिन विक्टोरिया पुलिस के डेप्यूटी कमिश्नर शेन पैटन कहते हैं कि इस्लामिक समाज पहले से सुरक्षा अधिकारियों को अच्छी जानकारी देता रहा है।
We do get tremendous support from a range of areas, certainly Victoria, the Board of Imams, the Islamic Council of Victoria, the Somalian community. Community leaders have condemned the violence. We continue to get information from all parts of society and we're very pleased with the relationships we have. Clearly, we want to get the most information we can, but those people I've mentioned, those areas, they are providing support to us.
कई मुस्लिम संगठनों सहित ऑस्ट्रेलियन नेशनल इमाम काउंसिल ने स्कॉट मॉरिसन पर आतंकी हमले के राजनीतिकरण का आरोप लगाया। काउंसिल ने आतंकी हमले को राष्ट्रीय आपदा बताया, लेकिन ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के बयान में इस्लाम को रेडिकल यानी अतिवादी और डेंजरस यानी खतरनाक विचारधारा से जोड़ने से वे नाराज हैं। सप्ताहांत पर श्री मॉरिसन ने कहा था कि वे धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ बोलना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में धार्मिक अतिवाद के मामले में एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम से सबसे ज्यादा खतरा है। इमाम काउंसिल के उपसचिव शेख आला अल जोकम ने SBS रेडियो के अरेबिक 24 कार्यक्रम को बताया कि काउंसिल श्री मॉरिसन के बयान की निंदा करती है।
Comments like these and linking terrorism and extremism to the religion of Islam is a very dangerous matter because it negatively impacts the relationships between Muslims and non-Muslims in the Australian society.
ऑस्ट्रेलिया के ग्रैंड मुफ्ती ने भी सरकार की मुस्लिम कम्युनिटी के नेताओं से ज्यादा सहयोग की मांग को खारिज कर दिया। ग्रैंड मुफ्ती इब्राहिम अबू मोहम्मद ने अरेबिक 24 से कहा कि प्रधानमंत्री और उनके होम अफेयर्स मिनिस्टर ने ऑस्ट्रेलिया के मुस्लिम समाज के प्रति गंभीर भेदभाव किया। इस्लामिक काउंसिल ऑफ विक्टोरिया के उपाध्यक्ष एडल सलमान कहते हैं कि उन्हें निराशा है कि प्रधानमंत्री मॉरिसन को ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज पूरी मदद नहीं कर रहा। भारतीय मूल के विक्टोरिया की टारनेट सीट से कैंडिडेट जुल्फी सैयद बताते हैं कि वे प्रधानमंत्री मॉरिसन के बयान से बेहद निराश हैं।
ये एक बहुत बड़ा स्टंट है जहाँ तक मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव से है, और ये ऐसा रिलीजन को नहीं लाना चाहिए पॉलिटिक्स के बीच में। और ये इत्तेफाक समझे आप या फिर एक प्री प्लान समझे आप, ये इलेक्शन से थोड़े दिन पहले ही हो चुका है ये। तो अब आप इसकी मद्देनजर रखते हुए अगर मेरे से पूछ रहे हैं आप, तो दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए, इतनी गिरीवी हरकत नहीं करना चाहिए था।
अगर मैं उस बर्क स्ट्रीट के इंसिडेंट के बारे में आपसे पूछूं, उसको आप कैसा देखते हैं और उससे जो वाइडर इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया में रहती है उस पर क्या असर पड़ता है?
उस पर असर ज्यादा तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बात फिर रिलीजन पे आ रही है, और एक मुसलमान अगर खराब काम करता है तो पूरे मुसलमान का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। अगर वैसा देखा गया तो देर आर 1.5 बिलियन मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड, और उसमें से 24 मिलियन या 25 मिलियन लोग तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। तो अब आप सोचें उसमें से 0.04% मुसलमान वर्ल्ड के यहाँ पे आ गए, तो यू कैन नॉट मार्जिनलाइज, या आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि पूरी कम्युनिटी खराब है। ये थोड़े रेडिकल इस्लाम से जो खराब करके रखे हर चीज को।
और उनकी रोकथाम के लिए क्या, उससे बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए?
मेरे हिसाब से तो इमिग्रेशन लॉज और टाइट करना चाहिए, और उनको ये असाइलम सीकर्स को भी जरा देख सोच समझ के करना चाहिए हर चीज। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि असाइलम सीकर्स को सीधा सीधा नो बोलना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, लेकिन इन पे नजर रखना चाहिए। दे आर हियर फॉर अ रीजन। वो असाइलम सीकर्स उनकी उनकी जगह जहाँ से आ रहे हैं वो हार्श बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो इसीलिए तो असाइलम सीख कर रहे हैं ना वो लोग। लेकिन लोग अच्छे हैं, लेकिन देखे हुए वो लोग बर्बादी देखे हुए हैं, तो उन पर जरा देखना चाहिए, उनको तरीके से समझना चाहिए, उनको जरा नजर रखना चाहिए, वो ना कि पूरी छूट देना चाहिए उनको, जो चाहे करें आप।
The 2018 SBS National Languages Competition. Have you entered? The competition is open to anyone learning a new language until the 18th of November. For more information, visit sbs.com.au/NLC18.